ओम शांति, ओम शांति। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बेहद का बाप हम बच्चों को हद से निकाल बेहद में ले आते हैं। कलयुग में हम थे तो हद में थे। कैसे हद में थे? सारा दिन मैं मेरा 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 यही करते रहे। तो हद में मैं मेरा कहना, ये तो कितना बड़ा ज्ञान है। तो बाबा हमें हद से बेहद में ले जाते हैं। कैसे बेहद में ले जाते हैं? बस और कुछ नहीं, सिर्फ मैं जो देह अभिमान के आधार पर था, उसको बाबा कहते बदल कर कहो मैं आत्मा। तो मैं आत्मा हूं तो हद से बेहद में आ जाएंगे, क्योंकि आत्माएं तो हम सब है, सब आत्माएं भाई भाई है। फिर मेरा 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 जो करते थे, तो बाबा कहते मेरा कहना भी है तो कहो मेरा बाबा, बाबा के साथ मेरे सर्व संबंध। तो ये हद के संबंधों से, हद की बातों से निकल जाएंगे। और बेहद में टिके तो मन में जितनी शांति चाहिए उतनी ला सकते हैं, और हद में है तो कभी भी शांति नहीं मिलेगी, कभी खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि सब विनाशी है। तो आज बाबा ने कैसे बेहद में जाना है, हदों से निकलना है, तब जीवन में सुख और शांति का अनुभव करेंगे, वो बाबा ने बताया। कई कहते हैं ना, कैसे सुख शांति का अनुभव करें? सबसे सहज उपाय, हद से निकल बेहद में जाओ। और उसके लिए क्या करना होगा? कई बार क्षमा करना होगा, भूल जाना होगा, ड्रामा कहना होगा, ये सब है बेहद में जाने की युक्तियां। क्यों क्या में फंसना नहीं, ये क्यों क्या में भी हद में आते हैं तब फंसते हैं। तो इसलिए बाबा ने जो हमें ज्ञान दिया है, उससे हम सहज हद से बेहद में जाते हैं। फिर अगर दुख थोड़ा अनुभव होता है, माना जरूर फिर हद में आ गए हैं, मैं मेरा में आ गए हैं। तो इसीलिए बाबा हम बच्चों को इनसे न्यारा बनाते हैं। अब कितना हम बनते हैं वो हमारे ऊपर है। अगर संगम युगी ब्राह्मण जीवन में भी दुख उठाते हैं कोई बात में, इसका मतलब जिसने दुख दिया उसका दोष नहीं है, वो कितना भी दुख दे हम उठाएं क्यों, लेकिन हम हद में आ गए हैं इसलिए दुख उठाते हैं। तो इसीलिए बाबा हमको सब हदों से पार ले जाते हैं। सुनते हैं बाबा के मां वाक्य, आज 29/4/2024 है। मीठे बच्चे, ये सच्चा सच्चा सत का संग है। कहां बैठे हैं हम सभी? सच्चे सच्चे सत के संग में। ये सच्चा सच्चा सत का संग है ऊपर चढ़ने का। तुम अभी सत बाप के संग में आए हो, इसलिए झूठ संग में कभी नहीं जाना। झूठ संग से तो नीचे ही गिरेंगे ना, डूब जाएंगे, पर सत के संग से चढ़ते हैं। तो ये सच्चा सच्चा सत का संग है ऊपर चढ़ने का। तुम अभी सत बाप के संग में आए हो, इसलिए झूठ संग में कभी नहीं जाना। वो झूठ संग हमको हद में ले जाएगा, और सच बाप का संग हमको बेहद में ले जाएगा। प्रश्न है, तुम बच्चों की बुद्धि किस आधार पर सदा बेहद में टिक सकती है। हद से बेहद में सदा टिके उसके लिए बाबा कहते हैं तुम बच्चों की बुद्धि किस आधार पर सदा बेहद में टिक सकती है, क्या आधार है बेहद में टिकने के लिए? उत्तर है बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिरता रहे। स्वदर्शन चक्र में देवता था, फिर पूज्य बना, अभी ब्राह्मण हो, हाँ फिर फरिश्ता बनना है, घर जाना है, तो हद से निकल बेहद में जाएंगे। बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिरता रहे। दूसरा, जो कुछ ड्रामा में चल रहा है ये सब नूंद है, इससे भी हम बेहद में जा सकेंगे, क्यों क्या में नहीं आएंगे। सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता इस ड्रामा में। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी है, ये बात बुद्धि में अच्छी तरह से आ जाए तो बेहद में टिक सकते हो। बेहद में टिकने के लिए ध्यान पर रहे। अब तीसरी बात, क्या ध्यान पर रहे जो बेहद में टिकेंगे? ये ध्यान पर रहे कि अविनाश होना है, इसलिए दीदी कहती है छोड़ो छोड़ो, क्योंकि अगर हद में है तो पकड़ के रखते हैं, परंतु बेहद में गए तो एक सेकंड में छूट गया कि बेहद में जाते हैं तो बस घर जाना है। तो बाबा कहते हैं बेहद में टिकने के लिए ध्यान पर रहे कि अविनाश होना है, हमें वापस घर जाना है, पावन बन करके ही हम घर जाएंगे। विकर्मों का बोझा सिर पर होगा तो पावन नहीं बन सकेंगे, फिर घर जाएंगे परंतु सजाएं खाकर, तो इसीलिए पावन बनकर घर जाना है। तो और तो कोई विकर्म नहीं करना है ना, अगर अभी भी विकर्म करते रहेंगे तो ये अब जो विकर्मों का बोझ पहले से ही है वो कब खत्म करेंगे, इसलिए पावन बन करके ही हम घर जाएंगे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, समझाते उनको है, किनको समझाया जाता है जो बेसमझ है, इसीलिए बाबा को समझाना पड़ता है। स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं क्योंकि बच्चे बेसमझ है, उनको नहीं पता है, तो इसलिए टीचर उनको पढ़ाते हैं। बच्चे पढ़ाई से समझ जाते हैं, तुम बच्चे भी पढ़ाई से समझ जाते हो, हमको पढ़ाने वाला कौन, ये तो कभी भूलो नहीं, कौन हमें समझा रहा है, कौन पढ़ा रहा है ना। गीता में भी आता अर्जुन में इतने प्रश्न थे, तो भगवान ने क्या कहा, पहले ये समझो तुमको कौन कह रहा है। वो तो समझ रहा था मेरा सखा कह रहा है, पर भगवान कह रहा है ये भूल गया, इसलिए उनके मन में प्रश्न उठते रहे और दुखी होता रहा। तो बाबा कहते हैं हमको पढ़ाने वाला कौन है ये तो कभी भूलो नहीं, पढ़ाने वाला टीचर है सुप्रीम बाप, तो उनकी मत पर चलना है, श्रेष्ठ बनना है। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ होते हैं कौन इस चक्र में, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ कौन? सूर्यवंशी। भाई चंद्रवंशी भी श्रेष्ठ है, परंतु ये श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, लक्ष्मी नारायण श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ सूर्यवंशी। तुम यहाँ आए हो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनने, तुम बच्चे जानते हो हमको ऐसा बनना है, हाँ लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, ऐसा स्कूल जहाँ हमें ये पढ़ाया जाए कि तुमको लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। बाबा कहते हैं ये स्कूल, ऐसा स्कूल 5000 वर्ष के बाद ही खुलता है, कोई और युग में ये स्कूल खुलता ही नहीं है, कोई जो टीचर कहे तुमको लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। यहाँ तुम समझ कर बैठे हो ये सचमुच सत का संग है, सत है ऊंच से ऊंच, उनका तुमको संग है, वो बैठकर सतयुग का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ देवता बनाते हैं, अर्थात फूल बनाते हैं। देवताएं हैं फूल, तो अर्थात फूल बनाते हैं। तुम कांटे से फूल बनते जाते हो, तुम कांटे से फूल बनते जाते हो। कोई फौरन बन जाते हैं, कोई को टाइम लगता है, जल्दी विकार छूटते नहीं है। चलो और विकार तो छूट गए, लेकिन गुस्सा वो छूटता नहीं है, तो भी तो कांटे ही कहेंगे ना। तो कोई फौरन बन जाते हैं फूल, कोई को टाइम लगता है। बच्चे जानते हैं ये है संगम युग, सो भी सिर्फ बच्चे जानते हैं। दुनिया वाले से पूछे ये कौन सा युग है, वो थोड़ी कहेंगे संगम युग है, वो तो कहेंगे कलयुग है। तो ये भी सिर्फ बच्चे जानते हैं कि ये संगम युग है। निश्चय है कि ये पुरुषोत्तम बनने का युग है। पुरुषोत्तम भी कौन सा, पुरुषोत्तम भी कौन सा, ऊंच से ऊंच आदि सनातन देवी देवता धर्म के जो महाराजा महारानी है, उनको कहेंगे पुरुषोत्तम, ऊंच से ऊंच। वो बनने लिए तुम यहां आए हो। तुम समझते हो हम आए हैं बेहद के बाप से, बेहद का सतयुगी सुख लेने। हर की जो भी चीजें हैं, जो भी बातें हैं, वो सब खत्म हो जाती है। हद के बाप, हद के भाई, चाचे, काके, मामे, ये हद की पाई पैसे की मिल्कियत आदि जिसमें बहुत मोह रहता है, ये सब खलास हो जाना है। जब ये बुद्धि में आए तब हद से बेहद में निकल जाए, ये सब खलास हो जाना है। बाप समझाते हैं ये मिल्कियत सब हद की है, अभी तुमको बेहद में चलना है। बेहद मिल्कियत प्राप्त करने के लिए तुम यहां आए हो। बेहद की मिल्कियत क्या है बाबा हमें कितना सुंदर बताते, इच्छा मात्रम अविद्या, इतनी प्राप्ति है बेहद की मिल्कियत में। और तो सब है हद की चीजें, शरीर भी हद का है, ये बेहद का थोड़ी है शरीर। तो शरीर में भी वो अभिमान, ये शरीर का अभिमान ये भी तो बाबा कहते हद में आना हुआ ना। शरीर भी हद का है, बीमार पड़ता है, विनाश हो पड़ता है, मर जाते हैं ना तो विनाश हो पड़ता है, अकाले मृत्यु हो जाता है। आजकल तो देखो क्या क्या बनाते रहते हैं, मरने के साधन कितने बनाते रहते हैं। साइंस ने भी कमाल कर दिए, विनाश के कितने साधन बनाए हैं, बाबा कहते कमाल कर दिए। माया का पंप कितना है, क्या क्या बनाया है। साइंस वाले खूब हिम्मत कर रहे हैं। जिनके पास बहुत महल माड़ियां आदि है, वो तो समझते हैं अभी हमारे लिए सतयुग है। ये नहीं समझते कि सतयुग में तो एक धर्म होता है। अभी सतयुग कहां से आया, अभी तो अनेक धर्म है, आपस में लड़ते झगड़ते हैं, तो सतयुग कैसे कहेंगे। ये नहीं समझते कि सतयुग में तो एक धर्म होता है, वो नई दुनिया होती है। तो बाप कहते हैं बिल्कुल ही बेसमझ है। तुम कितने समझदार बनते हो, ऊपर चढ़ते हो फिर सीढ़ी नीचे उतरते हो। सतयुग में तुम समझदार थे, फिर 84 जन्म लेते लेते बेसमझ बनते हो। फिर बाप आकर समझदार बनाते हैं, जिसको पारस बुद्धि कहेंगे। समझदार माना जिसकी बुद्धि पारस बुद्धि है। तुम जानते हो हम पारस बुद्धि बहुत समझदार थे। गीत भी है ना, क्या गीत है, पारस बुद्धि थे बहुत समझदार थे। गीत भी है, बाबा आप जो वर्षा देते हो, सारी जमीन आकाश के हम मालिक बन जाते। तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया जमी तो जमी आसमां पा लिया, सब पा लिया बाबा को पाके। बाबा आप जो वर्षा देते हो सारी जमीन आकाश के हम मालिक बन जाते हैं, कोई भी हमसे छीन नहीं सकता। ऐसे मालिक बनते हैं जो हमसे कोई छीन नहीं सकता, कोई का दखल नहीं हो सकता है, कोई मेरे से छीन नहीं सकता, कोई बीच में इंटरफियर भी नहीं कर सकता। दखल करना माना बीच में आना, दखल भी नहीं कर सकता। बाप बहुत बहुत देते हैं, इससे जास्ती कोई झोली भर न सके। इतना देते हैं, इतनी फुल कर देते हैं झोली, जो इससे जास्ती कोई झोली भर न सके। जब ऐसा बाप मिला है जिसको आधा कल्प याद किया है, तो कैसे याद किया? दुख में सिमरन करते हैं ना, कितना याद किया, कितना सिमरन किया, तो दुख में सिमरन सब करें। दुख में सिमरन करते हैं ना, जब सुख मिल जाता है फिर सिमरन करने की दरकार नहीं। दुख में सब सिमरन करते, जब दुख आता है तो क्या कहते हैं? हाय राम, हाँ हे राम कहते हैं ना, ऐसे अनेक प्रकार के अक्षर बोलते हैं। अब सतयुग में ऐसा कोई भी अक्षर होता नहीं, हे राम हाय राम, ये अक्षर ऐसे सतयुग में कोई नहीं बोलेगा। तुम बच्चे यहाँ आए हो पढ़ने के लिए बाप के सम्मुख, बाप के डायरेक्ट वर्षन सुनते हो, भगवान से डायरेक्ट सुनते हो। इनडायरेक्ट ज्ञान बाप देते नहीं, जैसे नहीं किसी के द्वारा देते हैं, ये भी क्या कहेंगे मुरली, डायरेक्ट शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा दिए है। तो बाबा कहते हैं इनडायरेक्ट ज्ञान बाप देते नहीं, डायरेक्ट देते हैं। इनडायरेक्ट कैसे समझते हैं मनुष्य? प्रेरणा मिलेगी, भगवान प्रेरणा देंगे, किसी के द्वारा देंगे, लेकिन नहीं डायरेक्ट ज्ञान देते हैं। मुझे बुलाते हो ओ बाप दादा, तो बाप भी रेस्पॉन्ड करते हैं, ओ बच्चो अब मुझे अच्छी रीति याद करो, भूलो नहीं। माया के विघ्न तो अनेक आएंगे, तुम्हारी पढ़ाई छुड़ाए, क्या करेगी माया? तुम्हारी पढ़ाई छुड़ाए, तुमको दे अभिमान में लाएंगे। ये माया का काम है, बाबा की पढ़ाई छुड़ाए, बाबा से दूर कर दे अभिमान में लाएंगे। इसलिए खबरदार रहो, होशियार रहो, हाँ होशियार खबरदार। ये सच्चा सच्चा सत्संग है ऊपर चढ़ने का। वो सब सत्संग आदि है उतराई के। सत का संग एक ही बार होता है, झूठ संग तो जन्म जन्मांतर अनेक बार होते हैं। बाप बच्चों को कहते हैं ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, अब वहां चलना है। हाँ वहां चलना है, कहाँ? घर तो जाना ही है, पर और आगे कहाँ? वहां चलना है जहाँ कोई अप्राप्त वस्तु नहीं होती। उस सत्युगी दुनिया में वहां जहाँ चलना है जहाँ कोई अप्राप्त वस्तु नहीं होती, जिसके लिए ही तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। ये जो बाबा कहते हैं, ये जो बाबा कहते हैं, बाबा ये जो कुछ बातें सुनाते हैं, ये तो तुम अभी सुनते हो, वहां ये कुछ भी पता नहीं पड़ेगा। सत्युग में थोड़ी ये बातें सुनने को मिलेगी, वहां तो कुछ भी पता नहीं पड़ेगा। अभी तुम कहां जाते हो? अपने सुख धाम में। सुख धाम तुम्हारा ही था, तुम सुख धाम में थे, अब दुख धाम में हो। बाबा ने बहुत बहुत सहज रास्ता बता दिया है, वही याद करो। कितना सहज रास्ता बाबा ने बताया, वही याद करो। हमारा घर है शांति धाम, वहां से हम स्वर्ग में आएंगे, और कोई स्वर्ग में आता ही नहीं है। बाबा कहते तुम्हारे सिवाय और कोई स्वर्ग में आता ही नहीं है। सोचो, कई कहते स्वर्ग सिधारा, स्वर्ग पधारा, स्वर्ग में जाएगा। बाबा कहते तुम्हारे सिवाय कोई स्वर्ग में आता ही नहीं है। तो तुम ही सिमरन करेंगे ना, याद करेंगे। हम पहले सुख में जाते हैं फिर दुख में। कलयुग में सुख धाम होता ही नहीं, सुख मिलता ही नहीं, इसलिए सन्यासी भी कहते हैं। कलयुग में सुख मिलता ही नहीं है, इसलिए सन्यासी भी कहते हैं सुख काग विष्ठा के समान है, ना मात्र है ना के बराबर है, सुख काग विष्ठा के समान है। अभी बच्चे समझते हैं बाबा आया है हमको ले घर ले चलने, हम पतितों को पावन बनाकर ले जाएंगे। पावन बनेंगे कैसे? याद की यात्रा से। यात्रा पर बहुत नीचे ऊपर होते हैं वो जो दुनिया में जाते हैं तीर्थों पर यात्राओं पर, बहुत नीचे ऊपर होते हैं। कैसे? कोई तो बीमार पड़ जाते हैं फिर लौट आते हैं। बीमार पड़ गए रास्ते में, या हड्डी टूट गई, या कुछ हो गया, गिर गए, या कुछ ऐसा नुकसान हुआ, तो वापस आ जाएंगे ना। तो बाबा कहते कोई तो बीमार पड़ जाते हैं फिर लौट आते हैं, ये भी ऐसा है। इस रूहानी यात्रा पर भी बच्चे जाते हैं फिर माया विघ्न बहुत डालती है फिर लौट जाते हैं वापस, ये भी ऐसे है। ये है रूहानी यात्रा, अंत मति सो गति हो जाएगी। हम अपने शांति धाम में जा रहे हैं, है वो सहज, परंतु माया बहुत बुलाती है। तुम्हारी युद्ध माया के साथ है। बाप बहुत सहज कर समझाते हैं। क्या सहज कर समझाते हैं? हम अभी शांति धाम जाते हैं। कितनी सहज बात बाबा ने बता दी है। हम अभी शांति धाम जाते हैं, बाप को ही याद करते हैं, दैवी गुण धारण करते हैं, पवित्र बनते हैं। तीन चार बातें मुख्य है जो बुद्धि में रखनी है। सुनाई ना बाबा ने कौन सी तीन चार बातें? हम अभी शांति धाम जाते हैं, बाप को याद करते हैं, दैवी गुण धारण करते हैं, पवित्र बनते हैं। बस ये तीन चार बातें मुख्य है जो बुद्धि में याद रखनी है। विनाश तो होना ही है। 5000 वर्ष पहले भी हम गए थे, घर ऐसे ही गए थे, विनाश हुआ था, हम घर गए थे। फिर पहले पहले हम ही आएंगे। गायन भी है ना, राम गयो रावण गयो जाके बहु परिवार। राम का भी परिवार गया, रावण का भी परिवार गया। रावण का तो बहुत बड़ा परिवार है, वो भी सब जाएगा। जाना तो सबको है शांति धाम। तुम जो पढ़ते हो उस पढ़ाई अनुसार पद पाते हो। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। कोई कहे, हाँ कोई कहे, कई आते हैं ना, वो आत्मा का ज्ञान देते हैं, परमात्मा का ज्ञान देते हैं, कहता है मैं मानूंगा तब जब हमको साक्षात्कार होगा। ऐसे कैसे मानूंगा? आप जो कहते हो मुझे साक्षात्कार हो तब मैं मानूं। तो कोई कहे हम साक्षात्कार करें तो हम सत्युग में जाएंगे, हम कैसे माने? कैसे पता चलेगा? साक्षात्कार हो तो हमको मालूम पड़े। तो बाबा क्या जवाब देते? देखो ये चित्र लक्ष्मी नारायण का, ये साक्षात्कार नहीं है तो फिर क्या है? चित्र जब देखते लक्ष्मी नारायण का, ये हम ही थे, हम ही बनेंगे, तो जरूर हम सत्युग में जाएंगे तभी तो ये बनेंगे ना, यहाँ थोड़ी बनेंगे। तो इसका मतलब ये सत्युग का साक्षात्कार ही तो कर रहे लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखकर। तो बाबा कहते ये चित्र लक्ष्मी नारायण का साक्षात्कार नहीं है तो क्या है? इसके सिवाय किसका साक्षात्कार करना है? तो कोई कहे आत्मा का साक्षात्कार करना है, तो अपने आप का साक्षात्कार करना है तो कैसे करते? अपना चेहरा कभी इन आंखों से देख सकते हो क्या? वो तो आईने से ही देखना होता है ना चेहरा अभी अपना। तो ज्ञान का दर्पण है, ज्ञान ही साक्षात्कार का रूप है जिससे हम अपने आप को देख सकते हैं। तो बाबा कहते हैं इसके सिवाय किसका साक्षात्कार करना है? बेहद के बाप का, चलो परमात्मा का, और तो कोई साक्षात्कार काम के ही नहीं है। चलो कोई कहे देवी का साक्षात्कार हो, गणेश का, हनुमान का हो, ये हो वो हो, बाबा कहते ये तो सब काम के ही नहीं है साक्षात्कार। बाबा का साक्षात्कार चाहते हैं, अब बाबा से मीठी तो और कोई चीज ही नहीं है। कल भी बाबा ने कहा ना, पहले गीता में भी आता है, अर्जुन को साक्षात्कार हुआ एकदम ज्योति का, बहुत तेजोमय, बहुत तेजोमय। उसने कहा बस करो बस करो, हाँ बस करो, हाँ मैं नहीं सहन कर सकता, बहुत तेजोमय। तो शुरू में यज्ञ में भी ऐसे बहुत साक्षात्कार करते थे तेजोमय स्वरूप का, फिर कहती थी आंखें बंद करके बस करो बस करो। तो वो भक्ति मार्ग का संस्कार था ना, बस करो। समझते शिव बाबा तो बहुत तेजोमय, इतना तेजोमय, हजारों सूर्यों से तेजोमय। लेकिन बाबा कहते मैं तो बिंदी हूं, इतना शीतल हूं, हजार सूर्यों से तेजोमय हो तो कोई देखे तो वहीं जल जाए। एक सूर्य के आगे भी इतना तेज है तो हजारों सूर्यों से तेजोमय कैसे होगा। बाबा का स्वरूप तो अति शीतल है। हाँ, तभी तो बाबा ने जब साक्षात्कार किया शिव बाबा का तो क्या कहा, कोई लाइट थी, कोई माइट थी, हाँ बहुत सुंदर, वो कैसे मेरे करीब आई और मेरे में समा गई। अगर हजारों सूर्यों से तेजोमय होता तो क्या होता। तो बाबा कहते हैं, तो आत्मा कहती है बाबा का साक्षात्कार करें। हाँ, तो बाबा से मीठी और तो कोई चीज नहीं है। बाबा कहते हैं मीठे बच्चों, पहले अपना साक्षात्कार किया है। आत्मा कहती है कि बाबा का साक्षात्कार करें। अभी कौन कहता है, किसको इच्छा होती है बाबा का साक्षात्कार करें, हाथ उठाओ भाई, किसको इच्छा होती है, नहीं होती है। देखो एक हाथ उठा रही है, बाकियों को नहीं होती है, नहीं होती है, क्योंकि ज्ञान ही तो साक्षात्कार है ना। आत्मा कहती है कि बाबा का साक्षात्कार करें, तो अपना साक्षात्कार किया है पहले, ये तो बताओ। ये तो तुम बच्चे जान गए हो, हाँ ज्ञान मिल गया है कि मैं कौन हूँ और बाबा कौन है। अब समझ मिली है हम आत्मा है, हमारा घर है शांति धाम। ये समझ ही साक्षात्कार है। अच्छा, अगर हो भी गया आत्मा एक बिंदी है, मिल हो गया साक्षात्कार, तो कईयों को समझ में ही नहीं आएगा ये क्या साक्षात्कार हुआ। फिर वो आत्मा की बिंदी है या शिव बाबा की बिंदी है, वही पता नहीं चलेगा। और चलो हो भी गया तो उस समय लगा कि वाह बहुत अच्छा, फिर एक सेकंड में ओझल हो गया, फिर वियोग हो गया, ढूंढते रहेंगे वो अभी क्यों नहीं दिखाई देता ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ये तो तुम बच्चे जान गए हो, अब समझ मिली है हम आत्मा है, हमारा घर है शांति धाम। वहां से हम आत्माएं आती है पाठ बजाने। ड्रामा के प्लान अनुसार पहले पहले सतयुग आदि में हम आते हैं। आदि और अंत का ये है पुरुषोत्तम संगम युग। इसमें सिर्फ ब्राह्मण ही होते हैं और कोई नहीं, बाकी तो सब कलयुग में। कलयुग में तो अनेका अनेक, क्या है, अनेका अनेक धर्म कुल आदि हैं। सतयुग में एक ही डिनास्टी होगी, एक ही राजाई होगी, ये तो सहज है ना। इस समय तुम संगम युगी ईश्वरीय परिवार के हो। तुम न सतयुगी हो और न कलयुगी हो। ये भी जानते हो कि कल्प कल्प बाप आकर ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं। यहां तुम बैठे हो तो यही स्मृति में आना चाहिए, शांति धाम सुख धाम, ये स्मृति में आना चाहिए। बाकी ये है दुख धाम। इस दुख धाम का है वैराग्य, अर्थात संन्यास बुद्धि से। वो कोई बुद्धि से संन्यास नहीं करते। बाबा कहते संन्यासी जो है वो बुद्धि से संन्यास नहीं करते हैं, वो तो घर बार छोड़ संन्यास करते हैं। न होगा बांस न बजेगी बांसुरी, इसको कहते हैं ना, बस छोड़ दिया बांस, कोई छोड़ दिया तो बांसुरी भी क्या बजेगी। तो इसीलिए घर कोई छोड़ो तो बुद्धि नहीं जाएगी। लेकिन हमको बाबा कहते हैं छोड़ना कुछ भी नहीं है, रहना घर में है, फिर भी बुद्धि से हटना है। तो बाबा कहते हैं वो तो घर बार छोड़ संन्यास करते हैं, तुमको तो बाप कभी नहीं कहते हैं घर बार छोड़ो। इतना जरूर है, क्या जरूर है, घरवाल नहीं छोड़ो, पर इतना जरूर है कि भारत की सेवा करनी है व अपनी सेवा करनी है। सेवा तो घर में भी कर सकते हो, पढ़ने लिए आना जरूर है, स्कूल में आना है पढ़ने लिए, सेवा तो घर में बैठ भी कर सकते हो, यानी जरूरी यहाँ ही रहना है तब सेवा कर सकते हैं। पढ़ने लिए आना जरूर है, फिर होशियार होकर औरों को भी आप समान बनाना है। टाइम तो बहुत थोड़ा है, गायन भी है ना, बहुत थोड़ा टाइम है, तो क्या करो, क्या गायन है, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी अब थोड़ी रही। दुनिया के मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है, समझते हैं अभी तो 40,000 वर्ष पड़े हैं। तुमको बाप समझाते हैं बच्चों, अब बाकी थोड़ा समय है, तुमको बेहद में टिकना है, सब हदों से पार जाओ, मैं मेरे के बेहद में टिकना है। सारी दुनिया में जो कुछ चल रहा है सब नोंद है, जू मिसल ड्रामा चल रहा है, ऐसे समझो तो बेहद में टिकेंगे। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी है, वही आकर वही आकर पढ़ेंगे। कौन पढ़ेंगे ये पढ़ाई, जो सतयुग में जाने वाले होंगे। अनेक बार तुमने पढ़ा है, तुम अपना स्वर्ग स्थापन करते हो श्री मत पर, ये भी जानते हो ऊंच से ऊंच भगवान आते भी भारत में है। कल्प पहले भी आए थे, याद आता है, कल्प पहले भी आए थे। तुम कहेंगे कल्प कल्प ऐसे बाप आते हैं, कहते हैं हाँ बाबा क्या कहते हैं, मैं कल्प कल्प ऐसी स्थापना करूंगा। विनाश भी तुम देखते हो, तुम्हारी बुद्धि में ये सब बातें बैठती जा रही है, बैठती जा रही है ना। स्थापना विनाश और पालना का कर्तव्य कैसे होता है तुम जानते हो, फिर औरों को समझाना है। तुम जान गए हो, फिर औरों को समझाना है, आगे तो तुम भी नहीं जानते थे। बाप को जानने से बाप द्वारा तुम सब कुछ जान जाते हो। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी यथार्थ रीति से तुम जानते हो। मनुष्य कैसे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं ये बाप तुमको समझा रहे हैं, तुमको फिर औरों को समझाना है। तुम बच्चे अभी पारस बुद्धि बन रहे हो, सतयुग में होते ही है पारस बुद्धि, ये है पुरुषोत्तम संगम युग। इसको, इस युग को और को क्या नाम देंगे, गीता एपिसोड। गीता का ज्ञान इस समय भगवान दे रहे हैं, जो कल्प पहले दिया था, ये है गीता एपिसोड। हाँ, गीता एपिसोड कहा जाता है। जब तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो, गीता सुनाने वाला तो भगवान खुद है, मनुष्य नहीं सुनाते, तुम आत्माएं सुनती हो फिर औरों को सुनाती हो। जो भगवान ने तुमको सुनाया है वो उनसे सुनती हो फिर औरों को सुनाती हो। इसको कहा जाता है, जो भगवान सुनाते उसको क्या कहेंगे, रूहानी नॉलेज, रूहानी ज्ञान। भगवान हमें रूहानी ज्ञान देते हैं। जो रूहानी भाइयों को तुम सुनाते हो, वृद्धि को पाते रहते हो। तुम जानते हो बाबा आकर के सूर्यवंशी चंद्रवंशी डायनेस्टी स्थापन कर रहे हैं। किसके द्वारा, किसके द्वारा सूर्यवंशी चंद्रवंशी डायनेस्टी स्थापन कर रहे हैं, ब्रह्मा मुख ब्रह्मा द्वारा। तो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुल भूषणों द्वारा, ब्रह्मा अकेला तो नहीं करेगा ना इतनी बड़ी स्थापना, तो ब्रह्मा के द्वारा और ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुल भूषणों द्वारा। बाप श्रीमत देते हैं, ये समझने की बात है, भगवान श्रीमत देते हैं समझने की बात है। दिल पर नोट करना है, ये तो बहुत सहज है, ये भूलना नहीं, ये भगवान हमको श्रीमत देते हैं। ये तो बहुत सहज है, ये दुख धाम। अभी हमको घर जाना है, कलयुग के बाद है सतयुग। बात तो बहुत छोटी और सहज है भाई, तुम न पढ़े हो, लौकिक पढ़ाई नहीं भी पढ़ी है। कई होंगे जो कभी स्कूल में भी नहीं गए, लौकिक पढ़ाई बिल्कुल नहीं पढ़ी, लेकिन इतने समझदार होते हैं, पढ़े लिखे वालों से भी ज्यादा समझदार होते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, तुम भले तुमने कुछ भी पढ़ा नहीं है, अक्षर ज्ञान नहीं भी है, भले तुम न पढ़े हो तो भी कोई हर्जा नहीं। हमारे पास अर्जुन दादा थे, यज्ञ कई थे, माँ लेकर आई उनको बच्चा, तो बाबा ने ही पढ़ाया, जो कुछ वहां पढ़ा, जो भी पढ़ाता, थोड़ा दिमाग भी उनका कमजोर था, कुछ भी नहीं पढ़ा, तो बाबा उसकी इतनी महिमा करते थे, इतनी सेवा करता था, बात मत पूछो, इतना ऑनेस्ट, भले पढ़ा लिखा नहीं था, बहुत ऑनेस्ट था। तो बाबा उनको कहते थे, तुम सच्चे अर्जुन हो, क्योंकि तुमने केवल भगवान से ही पढ़ा है और किसी से नहीं पढ़ा है, भगवान ही तुम्हारा टीचर है। बाकी और तो नशा दिखा रहे हैं, मेरा फलाना टीचर, मेरा फलाना टीचर। अब वो क्या नशा दिखाएगा, कभी स्कूल ही नहीं गया, कब पढ़ाई नहीं पढ़ी, लेकिन असच्चा अर्जुन जो भगवान की पढ़ाई पढ़ रहा है। तो बाबा कहते हैं, भाई तुम न पढ़े हो तो भी कोई हर्जा नहीं है, जो पढ़ना जानते हैं उनसे फिर सुनना चाहिए। अब मुरली नहीं पढ़ सकते क्योंकि नहीं पढ़ना आता है, अक्षर ज्ञान नहीं है, तो कोई बात नहीं, तुम किसी से सुन सकते हो, दूसरे आपको सुनाएंगे, इसमें क्या है, उनसे फिर सुनना चाहिए। शिव बाबा है सब आत्माओं का बाप, अभी उनसे वर्षा लेना है, बाप पर निश्चय करेंगे तो स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। अंदर में भी अजपा जाप चलता रहे, बाबा की याद अंदर में चलती रहे, अजपा जाप। हाँ, कोई जाप नहीं करना शिव बाबा पर पता है मैं कौन मेरा कौन। शिव बाबा से बेहद सुख, स्वर्ग का वर्षा मिल रहा है, इसलिए शिव बाबा को जरूर याद करना है। सबको हक है, किस बात का हक है सबको, बेहद के बाप से वर्षा लेने का, हर आत्मा को हक है। जैसे हद का बर्थ राइट मिलता है, जितने भी बच्चे होंगे एक माता पिता के, तो वो बच्चे समझेंगे ना, मुझे भी हक है अपने पिता के अधिकार का, वर्षा लेने का। जैसे हद का बर्थ राइट मिलता है, वैसे ये फिर है बेहद का। शिव बाबा से तुमको सारे विश्व का राज्य मिलता है। छोटे छोटे बच्चों को भी ये समझाना चाहिए ना, उनको भी उनका भी अधिकार है ना बाबा से पढ़ाई पढ़ने का, राजाई लेने का। हर एक आत्मा का हक है बाप से बर्थ राइट लेने का। कल्प कल्प लेते भी जरूर है, तुम वर्षा लेते हो जीवन मुक्ति का। जिनको मुक्ति का वर्षा मिलता है वो भी जीवन मुक्ति में आते जरूर है। भले सत्युग त्रेता जीवन मुक्ति का समय वो परमधाम में है, लेकिन जैसे द्वापर में आते हैं उतने उस अनुसार उनको उतना जीवन मुक्ति का हक तो मिलता ही है। वो भी जीवन मुक्ति में आते जरूर है। पहला जन्म तो सुख का ही होता है, चाहे कभी भी आए, पहला जन्म तो सुख का ही होता है। तुम्हारा ये है 84वां जन्म, ये नॉलेज सारी तुम्हारी बुद्धि में रहनी चाहिए। बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं, ये भूलो मत, भूलो मत, हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं। देहधारी कभी ज्ञान दे न सके, उसमें रूहानी ज्ञान होता ही नहीं है, दे अभिमान में है, वो क्या रूहानी ज्ञान देगा, जो सदा देही अभिमानी है वही रूहानी ज्ञान देता है। उसमें रूहानी ज्ञान होता ही नहीं है जो दे अभिमान में। तुमको समझाया जाता है भाई भाई समझो, जो भी मनुष्य मात्र हैं और किसको भी ये शिक्षा नहीं मिलती सिवाय तुम बच्चों के। भल गीता भी सुनाते हैं, बहुत शास्त्री लोग हैं, गीता सुनाते हैं, भगवानुवाच काम महाशत्रु है। हाँ, पंडित लोग सुनाएंगे ना, भगवानुवाच गीता सुनाएंगे, काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे, इन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे, ये भी सुनाएंगे। परंतु खुद तो बनते नहीं, खुद तो विकारी होंगे ना, ग्रस्ती है, परंतु खुद परंतु समझते नहीं है। अब भगवान तो है ट्रुथ, वो तो सत्य है, देवता भी भगवान से ट्रुथ सीखे, देवताओं ने भी भगवान से सत्य, बाप से सत्य ज्ञान सीखा है, तब ऐसे बने हैं। श्री कृष्ण ने भी ये पद कहाँ से पाया, लक्ष्मी नारायण कहाँ से बने, क्या कर्म किया, कोई बता सकेंगे? अब तुम ही जानते हो, निराकार बाप ने उन्हों को ऐसा कर्म सिखाया, कैसे, किसके द्वारा, ब्रह्मा बाप द्वारा। ये सृष्टि है ना, अभी तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा, कुमार कुमारियां, तुम्हारे पास नॉलेज है रूहानी बाप की, तुम समझते हो हम भगवान को जान गए हैं। सभी क्या समझते हैं, हम कि हम भगवान को जान गए हैं। ऊंच से ऊंच वो निराकार है, उसका साकार रूप नहीं, बाकी जो भी देखते हो वो सब है साकार। मंदिरों में भी लिंग देखते हो, अर्थात उनको शरीर नहीं है, तो लिंग का क्या मतलब है, लिंग माना चिन्ह, तो ये शिव बाबा का चिन्ह है, निशानी है, ज्योति स्वरूप की निशानी है ज्योतिर्लिंगम। तो मंदिरों में भी लिंग देखते हो, अर्थात उनको शरीर नहीं है, ऐसे नहीं कि वो नाम रूप से न्यारा है, हाँ नाम रूप से न्यारा नहीं है, हाँ, और सब देहधारियों के नाम पढ़ते हैं, उनकी जन्म पत्री है। अब शिव बाबा की कोई जन्म पत्री निकाल सकता है क्या, जन्म हो तब तो जन्म पत्री लेवे, ऐसे तो वो माँ के गर्भ में प्रवेश करे फिर जन्म हो तो जन्म पत्री बने, बाबा की तो है नहीं जन्म पत्री है। अब शिव बाबा तो है निराकार, उनकी जन्म पत्री नहीं है, श्री कृष्ण की है नंबर वन, श्री कृष्ण की जन्म पत्री नंबर वन जन्म पत्री, कितना सुख उनके जीवन में। शिव जयंती भी मनाते हैं, शिव बाबा है निराकार कल्याणकारी, बाप आते हैं तो जरूर वर्षा देंगे, उनका नाम शिव है, वो बाप टीचर सतगुरु तीनों ही एक है, कितना अच्छी रीति पढ़ाते हैं, तीनों एक ही है लेकिन कितना अच्छी रीति पढ़ाते हैं, अच्छा मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, इस दुख धाम का बुद्धि से संन्यास कर, शांति धाम और सुख धाम स्मृति में रखना है, इसको कहेंगे हद से बेहद में आना। भारत की व अपनी सच्ची सेवा करनी है, सबको रूहानी नॉलेज सुनानी है। दूसरा, अपना सतयुगी जन्म सिद्ध अधिकार लेने के लिए क्या करो, अपना सतयुगी जन्म सिद्ध अधिकार लेने के लिए एक बाप में पूरा निश्चय रखना है, अंदर में अजपा जाप करते रहना है, पढ़ाई रोज जरूर पढ़नी है। वरदान, सर्व संबंधों की अनुभूति के साथ, सर्व संबंधों की अनुभूति तो बाबा से करनी है, पर उसके साथ प्राप्तियों की खुशी का अनुभव करने वाले तृप्त आत्मा भव। सर्व संबंधों की अनुभूति के साथ प्राप्तियों की खुशी का अनुभव करने वाले तृप्त आत्मा भव। जो सच्चे आशिक है वो हर परिस्थिति में हर कर्म में सदा प्राप्ति की खुशी में रहते हैं, जो सदा हाँ जो सच्चे आशिक है। कई बच्चे अनुभूति करते हैं कि हाँ वो मेरा बाप है, कहते भी हैं बाबा मेरा बाप है, साजन है, सच्चा बच्चा है कहते हैं, लेकिन प्राप्ति जितनी चाहते हैं उतनी नहीं होती है। केवल कहने मात्र कह देते हैं बाबा हमारा पिता है, हाँ साजन है, बच्चा है, पर उससे प्राप्ति क्या है वो अनुभव नहीं होती है। तो अनुभूति के साथ सर्व संबंधों द्वारा प्राप्ति की महसूसता हो, ये बहुत जरूरी है। तो अनुभूति के साथ खाली मेरा बाप है ऐसे नहीं, सर्व संबंधों द्वारा प्राप्ति की महसूसता हो, प्राप्ति हो, पिता से क्या मिल रहा है, टीचर से क्या मिल रहा है, तो प्राप्ति की महसूसता हो। ऐसे प्राप्ति और अनुभूति करने वाले सदा तृप्त रहते हैं, उन्हें कोई भी चीज की अप्राप्ति नहीं लगती। जहां प्राप्ति है वहां तृप्ति जरूर है, भरपूर है ना, प्राप्ति है तो भरपूर है तो तृप्ति जरूर है। स्लोगन, निमित्त बनो तो सेवा की सफलता का शेयर मिल जाएगा। निमित्त बनो, हाँ मदद करो, निमित्त के दो अर्थ है, नम्र निमित्त बनना माना अपने को केवल निमित्त समझना, मैं मेरा नहीं बाबा का है, दूसरा मैं जिम्मेदार हूँ ये भी समझना। तो निमित्त बनो तो सेवा की सफलता का शेयर मिल जाएगा। आज का अव्यक्त इशारा 29 अप्रैल। अभी बाप के संस्कार, बाप के गुण, बाप के कर्तव्य की स्पीड और बाप के अव्यक्त निराकारी स्थिति की स्टेज, सभी में समानता का मेला मनाओ। जब आप बाप की समानता का मेला मनाएंगे तब जय जयकार होगी, विनाश के समीप आएंगे। बाप की समानता ही विनाश को समीप लाएगी। बाप की समानता, बाबा के समान जैसे बनते जाएंगे तो विनाश को समीप लाएंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जैसे आप सभी जानते हैं, कल हमारे अति स्नेही भुवनेश्वर भाई ने शरीर छोड़ा, तो आज सुबह 8:30 भुवनेश्वर भाई के पार्थिव शरीर को ज्ञान सरोवर में ले जाएंगे, क्योंकि भले रहता वो पांडव भवन में था लेकिन उनकी सेवाएं ज्ञान सरोवर में थी। तो ज्ञान सरोवर वालों ने भी कहा कि हमारे पास भी ले आएं। तो पार्थिव शरीर को ज्ञान सरोवर ले जाएंगे, फिर 9:30 पांडव भवन में चारों धामों की यात्रा कराते अंतिम विदाई के लिए शमशान ले जाएंगे। तत्पश्चात 12:00 हिस्ट्री हॉल में उनके प्रति भोग लगाया जाएगा। भोग यहीं लगेगा हिस्ट्री हॉल में 12:00, लेकिन पहले 8:30 उनके पार्थिव शरीर को ज्ञान सरोवर ले जाएंगे, फिर 9:30 यहाँ लाएंगे, चार धाम की यात्रा करा के फिर ले जाएंगे और 12:00 भोग लगेगा। चलो ओम शांति।